नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओमान के तट पर एक तेल वाहक जहाज डूबने से 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई नागरिकों सहित चालक दल के सभी 16 सदस्य लापता है। गुजरात सरकार ने राज्य सरकार की ओर से संचालित 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क घटाने की घोषणा की है। और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में कल भारत के सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मरियानो नवोने से होगा। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन देश में औषधि, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। श्री नड्डा ने इस महीने की शुरूआत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भी समीक्षा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री नायडू ने गृहमंत्री को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी। श्री नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आंध्र प्रदेश को आर्थिक अनियमितताएं, गंभीर असफलता और व्यापक भ्रष्टाचार ने काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक व्यापक योजना तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हमेशा सभी पर बना रहेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अवसर भक्ति, विनम्रता और करुणा के साथ गरीब लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषाओं को संकलित करने वाली पुस्तक विंग्स टू ओवर होप्स खंड एक कल नई दिल्ली में जारी की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ई बुक का विमोचन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगी। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। महाराष्ट्र में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीमा शुल्क क्षेत्र 3 से 13 किलोग्राम से अधिक सोना, 10 करोड़ 33 लाख रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और 45 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। इस महीने की 10 से 14 तारीख तक मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र 3 द्वारा आयोजित एक प्रवर्तन अभियान के तहत यह जब्ती की गई। इस सीमा शुल्क क्षेत्र को रेड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान इसका आधार। उन्होंने कहा कि किसान और कृषि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों के लिए समर्पित कुछ उत्पाद और फसलों की 25 किस्में जारी की। गुजरात सरकार ने राज्य सरकार की ओर से संचालित 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क घटाने की घोषणा की है। कल राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले महीने राज्य सरकार की ओर से 2024-25 के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। गांधीनगर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है और सभी 13 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में 2100 सीटों पर एकेडमिक वर्ष 2024-25 के लिए लागू होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी कोटे की सीटों के लिए वर्तमान शुल्क 5,50,000 रूपये से घटाकर 3,75,000 रूपये और प्रबंधन कोटे की सीटों के लिए शुल्क 17 लाख रुपए से घटाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। ओमान के तट पर एक तेल वाहक जहाज डूबने से 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई नागरिकों सहित चालक दल के सभी 16 सदस्य लापता है। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार प्रेस्टीज फैल्कन नाम का यह जहाज ओमान के औद्योगिक बंदरगाह दुकम के पास डूब गया। यह जहाज यमन के अंदन बंदरगाह की ओर जा रहा था। ओमानी अधिकारियों ने समुद्री अधिकारियों के साथ खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के दक्षिणी भाग, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर कल तक अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इन क्षेत्रों में आने वाले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मध्य भारत और प्रायद्वीपों में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर 19 और 20 जुलाई को बहुत तेज वर्षा होगी। पश्चिम बंगाल के गंगेई क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 से 21 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि कल तक उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में कल तक मूसलाधार बारिश होगी, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ में 18 और 21 जुलाई और उत्तर प्रदेश में 20 और 21 जुलाई को तेज बारिश होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम और पॉल बैरिंजर से भेंट की। डॉ रामगुलाम के साथ मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने स्थायी द्वीपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री पॉल बैरिंजर के साथ भेंट के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने समस्यामयिक वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। देश के विभिन्न हिस्सों में आज मोहर्रम मनाया जा रहा है। यह दिन पैगम्बर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। उन्होंने करबला में सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद, निजामुद्दीन ओखला और महरैली सहित विभिन्न स्थानों पर मोहर्रम जुलूस निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूस को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। देश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अस्थायी आदेश जारी करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस के विरुद्ध सोशल मीडिया मंचों पर किसी भी तरह के अपमानजनक और गलत बयान देने पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कृष्ण राव की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से दायर मानहानि के मामले पर अपने अंतरिम आदेश में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं को 14 अगस्त तक सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के ऐसे बयान देने से रोक दिया है जिससे राज्यपाल की मानहानि होती है। उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल बोस संवैधानिक पद पर है और उन पर निजी हमले नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा अधिकार नहीं है जिसकी आड़ में मानहानिपूर्ण बयानों के जरिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाए। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर फाइनल में कल भारत के सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मरियानो नवोनी से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।